चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए, खैर खैर कहां पहुंच गए हम, कहां पहुंच गए। एक साल से मेरे पास आए तो कहने कहा था तो माफ हो गए, माँ करने को कहा मैं नहीं रख रहा हूं, इसे भी कोई भाई रखने को तैयारी नहीं है। मैंने कहा कुछ किस्मत हो, कुछ किस्मत हो, अल्लाह से रहती ही होगी, उसको अपनी सादत समझो, उसको अपनी नजर समझो, कोई रखने को तैयार नहीं है, इसकी मजबूरी मुझे रखना पड़ रहा है। क्या माँ बाप की मजबूरी मुझे मजबूरी रखना था, बाबा के बच्चों ने एक गाड़ी बांधी थी, एक हफ्ते की मां चले जाओ, एक हफ्ते की मां चले जाओ, एक महीने की मां चले जाओ, गाड़ी बांधी थी माँ बाप ने, साल भर तक ये अगर भाइयों पर फर्क है, माँ खुद को भी बांधी थी, खुद को भी किसी को नहीं देती, किसी देर ऐसा ही रात जाके जैसे सर का इतना दुख होते जब मैं सुनता हूं हमारे यहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, एक है मोहब्बत की वजह से लड़ना, मुझे मिल जाए तो जरूर तो सब एक बड़े समय से बड़ा सच है। बाल बाला जब आपकी ऐसी मोहब्बत होती है, हर बेटा चाहता है मेरे साथ में, हर बेटा चाहता है वहां तो समझ में आता है कोई जरूरत सब कुछ है, किसी की बिजली लड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए महीना बांध दो, 15 से 500, 8 से 500 ऐसी बीवियों को मुक्ति साहब की पूरी क्या करना चाहिए, रखना चाहिए या क्या करना है, जरूर करें मुक्ति साहब से पूछ ले जाके, इसकी बीवी ऐसे तैयार नहीं है, नीचे रहते हैं तो मैं नहीं रहूंगी, उसको तो नीचे से लगाया हुआ है और माँ बाप तो कान से सुने, पहले सुने तो कान से पहले सुने, मेरे भाई जो माँ बाप को खुश रखेगा भले लौट भूलेगा, भले लौट भूलेगा। मैंने भी देखा कि माँ बाप को खुश रखने वाला कभी परेशान हुआ, और इन आंखों के एक कोई सैकड़ों को देखा है जिन्हें माँ बाप को दे दुखाया और लाद को उनके साथ दे रहे थे, पर उससे बच कर आगे चल के हमें भी तो औलाद वाला बनना है, नहीं बनना करते हुए बहुत डरना चाहिए, बहुत डरना चाहिए, और जुल्म की कई शक्लें हैं, एक डरने से मारा गया जुल्म है, किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए जुल्म है, बेजा तकलीफ पहुंचाती है, इसलिए मैं हज पर जाने वालों से कहा करता हूँ, देखो भाई काम बड़ा नाजुक है, हम बड़ा नाजुक है, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے درخواست کی یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتا دیجیے جس سے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. مجھے عمل بتا دیجیے جس سے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں. مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں جو بھی جمع مانگے وہ قبول ہو جائے. جو بھی جمع مانگے دعا قبول ہو جائے مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں. مجھے عمل بتا دیجیے حلال اور
آخرت میں
कुछ लोग आएंगे और उनकी नेकियां सिहामी पहाड़ के बराबर होंगी। सिहामा एक पहाड़ है बहुत बड़ा, उनकी नेकियां उसके बराबर होंगी। लेकिन अल्लाह पाक इन सारी नेकियां को गलत अदम कर देंगे, बिटा देंगे, खत्म कर देंगे। साहबा परेशान हुए कि ऐसा क्यों होगा, अल्लाह पाक क्यों गलत करेंगे नेकियों को। और आपने शायद पढ़ा ये लोग नमाज भी पढ़ते होंगे, रोजा भी रखते होंगे, हज भी करते होंगे और जकात भी देते होंगे, चारों काम करते होंगे, वो जमाते नहीं होंगे, रोजा खोर नहीं होंगे, जकात की चोरी करने वाले नहीं होंगे, हज के बगैर नहीं रहेंगे, चारों काम करते होंगे, सबके बहुत जगह की नेकियों को कल अलग कर देंगे, अलग एक पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आए। तो साहबों ने जरा सुना ऐसा क्यों है। जकात ये है कि जब इनके सामने कोई हराम आता था तो ये बेधड़क उस पर लपक पड़ते थे, बेधड़क उस पर लपक पड़ते थे, उससे बचते नहीं थे, बचते नहीं थे। आज ये गोल बहुत बदल जा रहा है, आज यहाँ सब चलता है, यहाँ सब चलता है। अगर जाए के चक्कर में पड़े तो फिर पापे करने पड़ेंगे, बोल बड़े आम होते जा रहे हैं। यहाँ आजकल सब चलता है, सब चलने का पता तो पढ़ने के बाद पता चलेगा कि चलता है नहीं चलता है। तो वो जाए क्या चीज करके ज्यादा करे तो कब्जे का फायदा हो गया है, अल्लाह करे हमें कब्जे का फायदा हो जाए। अभी तो कब्जे की बदल नहीं चल सकता है, ना खुद बचते हैं ना बचते देते हैं, दूसरों को भी मजबूर करते हैं कि अल्फाज कह के। ताकि वो लोग होंगे नमाज भी पढ़ते होंगे, रोजा भी रखते होंगे, जकात भी देते, हज भी करते होंगे, कई बड़ी के सामने हराम आता था तो बेधड़क उस पर लपक पड़ते थे, यानी हराम के कबूल करने में जड़ी हो गए थे, दिलेर हो गए। तो लंबी सारी नियमों का लगा करते अब बताइए इससे ज्यादा जो खतरनाक हो सकती है। इसे मेरे भाइयों, जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, ऐसी हराम से बचना भी फर्ज है, हराम से बचना भी फर्ज है। अब हराम तफसील तो बहुत है, सिर्फ मोटी मोटी बातें बता देता हूं। मसलन बिजली की चोरी, चोरी करने वाले बड़े ओपरेट करते हैं, फैक्ट्री कारखाना बिजली की चोरी करता है, यार तुम क्या अपने ऐसे चलो 5 लाख मिल जाता है कैसे देंगे। इसलिए एक ही बार उसमें के 50 लाख गुजरा रहा होगा और इसको बुरा भी नहीं समझ रहे, बुरा भी नहीं समझ रहे। अब इस व्यक्ति की आमदनी से चाहिए नमाज पढ़े, रोजा रखें, जकात दें, हज करें, ये सताई में शब्द है तो मैं लेकर के आने जा नहीं जाए। बताइए बिजली की चोरी करने वाले उसको बड़ा समझ रहे हैं, हराम इतना आम हो गया हद तक के बाद मस्जिदों में भी कुछ नहीं की बिजली चल रही है। मैं खुद क्यों नहीं कहते मस्जिद ने नाम से लेता उसका, उस आबादी का पूरी आबादी को देगा, पूरी आबादी और मस्जिद भी तो बड़ा परेशान हो गया है कि रोशनी में तो कुरान पढ़ना भी जायज ना होगा, चोरी की बिजली में इसके तो पंखे की हवा बैठना भी दुरुस्त नहीं होगा। तो विचार आता है ऐसे व्यक्ति कराने वालों को, छोटे छोटे केबिन जो है ना ये भी सारे को दे रहे थे नहीं विचार आता। मैंने बहुत ही कहा था कि पत्थरों ने ये पंक्ति पत्ती जाते हैं चिंता जरूर था
बताइए इसमें बैठे जो
क्यों नहीं समझ रहे इसको? हराम पे जी को देना और इसको इसको कहते हैं कारखाने मिल चल रहा तो दो घर से भी अब तो शायद जब कोई ड्राइव हो गया उन्हें पहले तो लीडर लीडर आते थे ना उनसे मामला किया हुआ था करवाना मामला किया हुआ था उस मामले से उनकी जेब में जाता था इनका बिल आता नहीं था आता तो बहुत कम आता था तो घरों में बिजलियां चोरी वो तो बंद दरवाजा की चक्कर तैयार कर जाता है और इन दरवाजों को कोई ऐसा और मैंने वंदा मस्जिद पे बैठ के कह रहा हूं उनसे इतना आसानी से ये जुमला सुना है कि उनको चोरी का एहसास नहीं हो रहा अजी नहीं क्या करें इतने दुनिया से देंगे मेरी हकीक ने बताया कि घर में एयर कंडीशन पर बैठा हूं डॉक्टर ने बताया कि थोड़ी चीज इस्तेमाल करो बस तो आधे में बैठे हो पहले भी लाइन में गिरा के बैठे थे बिजली ऑफिस में नहीं अच्छा देखो लाइटर गिराए गर्मी में छत पर जाकर सो जाए इस चोरी की बिजली में पंखे और एयर कंडीशन चलाएंगे तो क्या बनेगा मेरे भाई और हमने जो खुदा नवाज था मुझे कैसे अच्छा नहीं लगता अगर उन पुत्रा है तो फौरन इसी मंजिल से तौबा करें ये शब्द तौबा की शब्द है कभी आप बना है कभी आप छोटा मोटा बना नहीं है ऐसी ही गैस की चोरी ये भी इतनी आम हो गई घरों में भी और जहां ना गैस के बड़े बड़े प्लांट हैं फैक्ट्री कारखानों में वहां भी मैंने कभी ये सौ फीसद ऐसे होंगे मैं सबको ही कह रहा कि एक बड़ा तबका इसमें मुबतला हो गया है गैस की चोरी हर आदमी समझता है कि काम का क्या हो रहा है अब नमाजी भी हिंदू भी रख रहे हैं ताजे सुझा रहे हैं और माशाल्लाह डेढ़ डेढ़ सौ करोड़ भी अंदाज करा रहे हैं अल्लाह इनको हिदायत दे पैसे दे कितनों के रोजों को खराब कर रहे हैं खुदा का खौफ भी नहीं है इनको सूद के पैसे से फैक्ट्रियां लगा के कौली एक फैक्ट्री बनाई और किसी बुजुर्ग को जाकर कौली आदर किया करते हैं कि हजरत इससे मुंह पहुंच गए शर्म नहीं आती इनको बुजुर्गों के वजू भी खराब कराते हैं अल्लाह वालों को क्या पता है क्या है ऐसे नहीं कर रहे ऐसों को अल्लाह वालों को हाजिया देना नहीं चाहिए उनकी कमाई का दुरुस्त ना क्यों उनकी इबादतों को खराब करते हैं तो बिजली की चोरी पानी की चोरी पानी की आप देखें पानी की चोरी क्या होती है देहातों में चले जाइए आपको पता चलेगा इतनी देहातों में पानी की चोरी है बारी है इसकी खेत की पानी की और बीच में से तोड़ के नाली बना के पानी अपने देहात से हम तो देहात में रहते हैं देहात के मसाले पता नहीं है देहात का सबसे बड़ा मतलब पानी की चोरी सर्दियों के रात में लोग दया देते हैं जब हमारे यात्रा में तस्वीर होती है तब पता चलता है जब सुबह तो नहीं आए तो रात को पानी का प्यार रहता है जब पानी का प्यार क्या होता है तो उनको दया भी होता है कि पानी की चोरी होती है नहरों में कोई तस्वीर है कि भैया सबसे यहाँ और सबसे वहां नहर की चोरी कोई नहर का प्यार रहना अब बताइए इस पानी की चोरी से जब खेती होगी और अगर जो भी खाएगा चाहे वो खरीद के खाए नबूसत तो आ ही जाएगी ना गुनाहगार तो नहीं होगा क्योंकि इसकी दुनिया इसमें नहीं है लेकिन नबूसत तो आ ही जाएगी एक आदमी जान के रह खाता है तो सही है एक आदमी जान के नहीं खाता धोखे से किसी ने गिरा दिया है तो मरेगा तो सही ना गुनाह तो नहीं होगा वो तो सही था लेकिन मरेगा तो सही जिसने जान के खाया उसके प्रत्यक्ष का गुना जिसको धोखे से दे दिया गया तो उसको गुना तो नहीं होगा प्रत्यक्षी का लेकिन मर तो जाएगा ना तो ऐसी पानी की चोरी के ऊपर यह सूद के ट्रैक्टर के ऊपर जो खेती बाड़ियां हो रही हैं मेरे भाई मैंने पहले जुड़ना कहा था आज हराम इतना आम हो गया जो हमारे दिन है यहाँ मेन लाइन का पानी नहीं आता तो एक पंप लगा के पानी खींचते हैं, पानी की जरूरत नहीं है, दूसरे का पानी खींच रहे हैं। कितने घरों में लगे हुए ऐसे पंप कि दूसरे का पंप लगा के खींच लिया। अब इस रूप से वजू करके पड़ते हो तो हाजिर क्या होगा, चोरी का पानी। कितने घरों में लगे हैं पता करने, अल्लाह ने करे हमारे घर में नहीं हो तो हम किसको नहीं करवाए, कोई बात नहीं, हम कुआं खिंचवा लेंगे, बोरिंग दे देंगे, उससे पानी ले लेंगे, लेकिन ये पानी नहीं खींचेंगे दूसरे का, जो भी है चोरी। तो हराम इतना आम हो गया कि मुझे आपको पता नहीं चल रहा, इसलिए हमारी सारी चीजें होनी चाहिए। कि मैंने इस मौजूद बात इसलिए लिया है कि रमजान मुबारक का महीना अल्लाह करे आज ही शब कदर हो तो कम से कम तौबा तो कर लें, क्योंकि गुनाह भरे सामने से तौबा का ख्याल नहीं आता किस चीज से तौबा करें। इसी तरीके से ड्यूटी चोरी जिसको ड्यूटी समझा गया, एक आदमी किसी इदारे में काम करता है, उस इदारे में उसको कह रहे आपकी ड्यूटी 8 बजे से लेकर 5 बजे तक, ये वक्त उसने उस इदारे को दे दिया, ये अमानत है। अगर ये 8 की जगह 8:30 गया और 5 की जगह 5:15 उठ गया तो 12 घंटे की ड्यूटी कर ली है इसको बड़ा समझा। एक आम शिकायत है फैक्ट्रियों में मजदूरों की तरफ से, देर से आते हैं जल्दी चले जाते हैं, देर से आते हैं जल्दी चले जाते हैं। जो हाजिरी का रजिस्टर होता है उसमें जाकर देखने के कितने वक्त पे आए हैं, जैसे बात इदारे वालों ने वो कार्ड बनाया हुआ है कंप्यूटर के जरिए, वो कार्ड दिखाओ तो अब होगा नहीं होता, वरना तो हाजिरी का लगन लगाते थे। चोरी फिर सीना चोरी, और जो रजिस्टर पर बैठा होता था ना
घंटों बातें करते रहना
सांप को देखो, ये सांप मजबूर है, ये सांप किस में मजबूर है, ये कुर्सियां रिश्तेदारों को बैठाने के लिए नहीं, अंदर ऑफिस में इसे जो काम कर रहे हैं उसको सारे शहर को बैठाने के लिए, लेकिन इसको कोई चोरी नहीं समझता, चोरी नहीं समझते उसको। ऐसे मेरे भाइयों, तिजारत में सूद का दखल इतना आ गया, इतना आ गया कि अल्लाह की बना तिजारत में ताजे पहचान के कि कहां हम फंसे रहे हैं, लेकिन एक जवाब देता है क्या करें, दुकानदार का कारोबार नहीं होता। ये जवाब किसने सिखाया? कारोबार तो पहले भी होते थे, सूद के साथ साथ रिश्वत भी, और ये जहन इस पर बन गया है कि आप रिश्वत के बगैर तो काम होता ही नहीं, ये जहन बना लिया है हम सब ने, चाहे आप दाढ़ी वाले हो, चाहे टोपी वाले हो, चाहे आप हाफिज साहब हो, चाहे मौलवी साहब हो, चाहे पीर साहब हो, हमने जहन बना लिया कि रिश्वत के बगैर काम नहीं होगा। मुझे बड़ा दुख है, दीन दीन साहब का दीन के एतबार से बड़े समझे जाते हैं और औलाद भी हाफिज कहने की तरह सूद का पैसा नहीं इस्तेमाल करता, बिल्कुल जो आता है उसको एक तरफ रख देता हूँ, इससे कितना बड़ा कारोबार है, रिश्वत तो देनी पड़ती है, तो उस पैसे से रिश्वत दे देता हूँ। ये तो ऐसी है जैसे पकाने को आदमी पेशाब से बात कर रहा हूं, ऐसी है, एक निजात को दूसरी निजात से बात कर रहा है। मैं नहीं कहता सूद, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सूद से मैंने अपने कारोबार को पास किया है, लेकिन रिश्वत तो देनी पड़ती है बड़े कारोबार में, तो जो इंटरेस्ट मिलता है उसको मैं रिश्वत के इदारों में दे देता हूँ। कैसा धोखा है शैतान, कैसा धोखा है। तो तिजारत में आज हमारी सूद और रिश्वत से भर गई। एक ये कि बिल्कुल ही खाने को नहीं है और उसके लिए आपकी मजदूरी कर रहा है, फिर भी पुलिस वाला आते जबरदस्ती जरूर करके दर्शवा देता है, वो तो किसी तरह हो जाए शिकट भी आएगी, लेकिन बड़ी बड़ी कारोबार से मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां रखे बड़े मकान में और फिर भी मेरी मजबूरी देना पड़ता है, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, वो तो मुफ्ती साहबान से पूछना पड़ेगा। तो ये सब वो बुजुर्ग है जिनसे तौबा की जरूरत है, जिनसे तौबा की जरूरत है। इसी तरीके से कम बोलना, कम नापना, और ये कम बोलना कम नापना हर ही शोबे के अंदर है, जमीनों की पैमाइश में भी कम नाप देते हैं, एक एक जमीन को चार चार आदमियों के हाथ बेच देते हैं, झगड़े खड़े होते हैं। तो कम बोलना और कम नापना कितना आम हो गया, कितना आम हो गया, दिल गलत बनाना कितना आम हो गया। इस तिजारत में ये गड़बड़ गुजरी है। इसी तरीके से कहां कहां करोना दवाई, अस्पतालों में दवाएं मिल जाती हैं, मरीज को नहीं मिलती, सरकारी अस्पतालों में दवाएं आती हैं बिक जाती हैं, मरीज को नहीं मिलती। एक अस्पताल का चौकीदार जिसको इसलिए खड़ा किया जाता है कि बेवक किसी को आने मत दो, मुलाकात का वक्त चार से छह है, आने मत दो, उसके लिए उसको 7,000 रखो, 7,000 रखो, मिलते हैं कितनी हलाल कमाई की है, सारा दिन खड़ा रहता है दरवाजे पर, तो बेवक ना आए वो भी फंस गया बेचारा। मुलाकात करने वाले आते हैं मुसाफर करके दस दस रुपये हाथ में लेते हैं, बेवक अंदर चले गए। अगर वो डॉक्टर बैठे तो बुरा ना माने, मैं सुनी सुनाई नहीं कहता, तो बीजी ये वो कहता हूं, अलीगढ़ राज्य के सबसे बड़ा अस्पताल जो समझा जाता है, अगर कोई और होता तो शायद मैं नहीं मानता, मेरे सीधे आदमी है, शरीफ आदमी है, उनका एक बच्चा कामल है, वो जवानी के करीब, तो कुछ उसके पैर का मंजिला था कि उसको ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, तो उस बड़े अस्पताल में उसका ऑपरेशन कराया। तो जब घर आए तो पता चले कि यहाँ से पेट कटा हुआ है। भाई जी कैसे कटा? ये गोदा निकाल लिया उसने। और जब उनसे कहा तो ज्यादा मत करो, तुम्हारी गर्दन भी चली जाएगी। और उन्होंने बताया कई महीने बाद, क्या आप बता दे तो सही, इंशाल्लाह हम लोग हालात में भी लोग रहते हैं दरवाजे से और उनको और भी काम ही पता रहते हैं, उनके भी सारे जो डर रहे हैं। इतना से कितने से मशहूर बड़े अस्पताल था जिसमें हमारे घर से आने एक समय से इधर हमने बहुत बड़ा काम करा लिया, पढ़ाई की जरूरत है वहाँ वहाँ पढ़ लिया कैसे पढ़ा लिया दूसरे से डाल रहा है
फादराबाद
तो
हैदराबाद में हैदराबाद
ऐसी चोरियां दुनिया में सुनी नहीं। एक मालूम है जो यार जो बड़ा बड़ा के दे दिया है क्या जो बड़ा बड़ा चलो हम उसी क्या नाम हो गए कि कितने दिन काम आएंगे
जो है आयो जो है
पांच डॉक्टर समझते हैं कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है लेकिन नौ से समझते हैं दूसरे तो वहां पहुंचा दिया और उसके बाद बच्ची को अस्पताल में दाखिल किया और अफ्तार का वक्त आया तो पूरे सिंध से आए थे बेचारे, पूरे घर की अबरोधा था लेकिन एक पैसा बेचारों के पास नहीं था। फिर दूसरे वार्ड से निकल रहा था क्योंकि मालदारों को अस्पताल है, तो उसने कहा हमारे पास अफ्तार के लिए भी 1000 रुपए दिए। फिर अल्लाह ने जाया करके हमारे उस इलाके की शादी को अल्लाह से उन्होंने अगर थे मैंने उनसे कहा और उसने सारा बंदोबस्त किया। अस्पताल ये दिल था और उन्होंने शहरी अफ्तार ही पहुंचाता रहा। सिंध से जो आते हैं वो पूरा पूरा आसान आ जाता है। अब बताइए ऐसे डॉक्टरों की कमाई में कैसे 1000 हो? एक आदमी किसी डॉक्टर मशहूर डॉक्टर के नाम पे वहां जाके ऑपरेशन कराता है तो भी किसी से कराना है पर असल हम तो पूरे ऑपरेशन में अपनी शक्ल ही नजर नहीं आई, उनके असिस्टेंट करते रहे वो तो आए ही नहीं अस्पताल में। मैं नहीं जानता हूं कि सारा डॉक्टर करेंगे कि क्या बनेगा उनका। उसने तो इस भरोसे से आया कि डॉक्टर के पास जा रहा है, इससे ऑपरेशन करा है और वो आए नहीं, मौजूद ही नहीं है वहां अस्पताल में। उनके असिस्टेंट कर रहे हैं और अब तो इन्हें तो फला डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया, ये झूठ नहीं है तो क्या है? उससे कह दो फीस दे दो कि मैं नहीं करूंगा, मेरा असिस्टेंट करेगा। और मैं इस कभी नहीं करा था वहां पर, वो तो उसके भरोसे से आया वो मजबूर से कराऊंगा। तो हर जगह हैदरिया नहीं है चल रही। तो हराम इतना आम हो गया कि दीदार भी फंस गया। ये बाहर निकाल रहे थे अल्फाज बदल बदल के सब पढ़ लिया, पत्र को अल्फाज से मिलता है मुफ्ती साहब क्या कहते हैं सब से बोल कर जो सब पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से बालों ओवर टाइम करते नहीं हैं, ओवर टाइम लगवा देते हैं, मैंने तो ओवर टाइम किया तो डॉक्टर वाले खूब जानते हैं ये चीजें। पर सूदी राव में काम करना, मुलाजमत करना, मेरे भाई कैसे है राजकुमारी जो किसी गुना का माने पहले उसको फिर गुना जो नेकी का माने पहले उसको नेकी। अब सूदी इदारों में मुलाजमतें करने का मतलब है कि सूदी کی ہدایت کو چلانے اور بڑھانے کے لیے معاملہ کر رہے ہیں, اس سے مفتی صاحبان سے دوسرے کو ہدایت اور امید رکھا جائے. اسی طریقے سے میرے بھائی کے دوستوں بزرگوں نے بغیر ٹکٹ کی کتنے مسافر چڑھتے ہیں, جیسے پیس چیک کراتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے, جیسے بیسوں سے میں بھاگے اس میں سے اس سے بھاگے, آخر میں جب نہیں بچ سکے تو ٹکٹ چیک ہوتا ہے اس کی جیب میں دوسروں پر ڈال کے اشتہار ہو جائے تو آپ کا سفر ہو رہا ہے. اسی طرح میرے کو مکہ بیٹھ گیا تھا, ختم ہو گیا یار پاکستان رہ گئے. تو میرے بھائی سب حرام ہیں, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی سب مبتلا ہے, یہ ان کے بہن بھائیوں میں مبتلا ہے. ساری تفصیل تو مختلف وقت نہیں آ سکتی, اس کے بہن بھائی بھی رہنا ہوتا ہے. اگر کوئی ان میں مبتلا ہے تو بھائی اس سے توبہ کر لیں, نہیں کرنا سوکھے ٹکڑے کھا لوں گا, روٹی چٹنی کھا لوں گا, دال روٹی کھا لوں گا, لیکن حرام نہیں ہوں گا. تو حرام سے بچنا ایسے ہی فرض جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے. اس لیے آج اس کا اہتمام کریں کہ حلال کھاؤں گا چاہے مجھے چٹکی روٹی کھانی پڑے چاہے دال روٹی کھانی پڑے, کیونکہ جب حلال آدمی کھائے گا تو اللہ رب العزت اس کھانے والے کو کے دل میں نور پیدا کرے گا. جو حلال کھائے گا اللہ حلال کھانے والے کے دل میں نور پیدا کرے گا, دل میں نیکی کے جذبات ابھریں گے, نیکی کرنے کا دل چاہے گا جب آدمی حلال استعمال کرے گا اور اچھے اچھے کام کرنے کو جی چاہے گا, یہ حلال کی برکت ہے جی چاہے گا. اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے پہ تبدیل چلے گی, وہ آدمی مانگتا ہے مانگتا ہے کون کچھ کام میں بات سمجھ رہے نہیں مانگتا ہے, جو حلال کھائے گا تو نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کی طبیعت ملے گی اور نیکوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اللہ کو نیک بنا دے. تو صحبت کا اندر ہوتا ہے, اگر غرض کی سلی کے پاس بیٹھے تو ٹھنڈک آئے گی اور آپ کی بڑھتی کے پاس بیٹھے تو گرمی آئے گی, نیکوں کے پاس بیٹھے گا تو نیکی کی جذبات بنیں گے, تو پھر نیک بننے کا شوق پیدا ہو جائے, ڈاکو بھی ہوگا چور بھی ہوگا لچر بھی ہوگا لفقہ بھی ہوگا کالا کرنے والا بھی ہوگا, تو اس کو نیک بننے میں شوق پیدا ہوگا جب نیکوں کی مجلس میں بیٹھے گا. یہ ایک 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 نیبر سے بہت بڑا جیسے ان کے پاس بیٹھے گا ویسا اس کا اللہ پاک بنا دیں گے, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ گناہ سے اس کو نفرت ہو جائے گی, نفرت ہو جائے گی اور نفرت ہو جائے گی تو گناہ سے بچنا آسان, یہ حلال کی برکات ہیں. آخرت کی فکر پیدا ہوگی, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, ہمیں تو آخرت کا خیال ہی نہیں آتا, ہمیں آخرت کا خیال ہی نہیں آتا کہ ایک دن وہاں جانا ہے. تو حلال کی برکت یہ کہ آخرت کا خیال آئے گا, آخرت کی فکر پیدا ہوگی. یہ سارے حلال کے اثرات ہیں اور بھی بہت سارے ہیں, یہ تو مختصر میں نے آپ کو بتایا کہ حلال کے اثرات ہیں, اور اس کا ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ حلال کے اثرات کیا ہوتے ہیں. آج ہم سب اتنے غلط کر سکتے ہیں کہ حلال کی برکتیں ہمارے سامنے ہیں. دیوبند کے اندر ایک بزرگ تھے شاہی عبداللہ رحم اللہ, بڑے ولی تھے, صاحب نسبت تھے, اہل اللہ میں سے تھے, پھر سیدھے سادے فقیر آدمی, ان کا معمول یہ تھا کہ یہ صبح پڑھنے سے پہلے جنگل میں جاتے اور جو قدرتی گھاس ہوتی ہے اس کو کاٹ کے ایک گٹھر میں جا کے مارکیٹ میں بیچتے, और एक सरकार की जितनी घास उसकी लाने के बैठक में बांधे और लेकर आए और लोग मार्केट में शादी की घास के इंतजार में रहते थे क्योंकि घर में बंदर पड़े थे और शादी को आते देखते तो होते हैं और शादी को उसको ले जाए जो बच्चा वो पहले हाथ लगाते उसको चार आने में भेज देते थे आज के दिन और वह चार आने नहीं करने के तो वह चार रुपये कह देते वो बड़े अजीब है जो हर कमाने वाले के लिए आज हमारी कमाइयों में बरकत हलाल होते हुए इसलिए भी हो रही कि कमाया हलाल तकसीम सही ना की तकसीम सही ना की तो जैसे कमाना सीखा होते कमाई की तकसीम भी सीखनी होती है फिर बरकत है रहमत और दुनिया आती तो यहां सब सुन लें कि बरकत चाहते कमाई में तो किस रास्ते से आएगी अब उस चार रुपए की सस्ती कहती कि एक रुपया तो वो सस्ता खैरात दे देते सस्ता खैरात एक रुपया अपने जो अजीज रिश्तेदार अकरबा होते थे उन पर खर्च करते थे क्योंकि आज रिश्तेदारों पर खर्च करने का रिवाज तकरीबन खत्म हो गया तकरीबन और सब आपके माँ बाप को दे देते देते वरना रिश्तेदारों का रिश्तेदार में से जा माँ मुंबर गरीब होते हैं इसका जो ख्याल नहीं आता जो रिवाज नहीं हालांकि अकरबों से खर्च करने का हुक्म और ये जकात के अलावा है जकात के अलावा है ये तो ध्यान नहीं आया कि अकरबों से खर्च करना कोई चीज है आया ख्याल शायद बहुत कम लोगों को आया होगा और बात तो कम करते ही खानदान वालों को तो ये रुपये अकरबों से खर्च कर देते थे जो भी औलाद में से बहन भाई में से जरूरतमंद हो और एक रुपया अपने घर के खर्चे में रखे और एक रुपया उस दौर के जो सुरहा मशायर और बुजुर्ग होते थे उन पर खर्च करते थे उनकी ज़ियारत करते थे आज ये रुपये खत्म हो गया ज्यादा बताइए अपने मस्जिद के आईमान इमाम साहिबान को कितने लोग हदिया देते हैं शायद बहुत कम मौजन को कितने लोग हदिया देते हैं अरे अगर मौजन से बड़ा बुजुर्ग कौन होगा कौन होगा अरे मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह के बड़े साहबजादे थे लाहौर में रहते थे मुफ्ती तकी उस्मान उस्मान साहब सबसे बड़े थे और वो मित्र ने हजरत खान जी रहमतुल्लाह के घर के पहले बैठे हजरत खान जी से बैठती थे तो वो शिक्षक सर रहमतुल्लाह ने उनको खत लिखा कि बेटा अल्लाह वालों की सोबत में बैठा करो तो उन्होंने जवाब दिया कि अब भाई अब तो हजरत के पास कोई नजरों में जिस्टर ही नहीं है या हजरत खान जी के बाद जाहिर जिस हजरत खान जी को देखा वो उसकी नजरों में कौन जिस्टर अब तो नजरों में कोई जिस्टर ये जवाब दिया बेटा अपनी मस्जिद के मौजन की सोहबत में बैठा करो कि जैसे वो पांच नमाजें तकबीर उगरा से पढ़ता है तो पांच नमाजें तकबीर उगरा से पढ़े तो हम बुजुर्ग ही ना समझे अल्लाह ना करे किसी के अंदर के दरबारों से 40 दिन की रोटी लेके मौजन से 40 तक रोटी लेके चले जाना कितने लोगों ने मौजन को हदिया दिया कितने लोगों ने दिल से मस्जिद के खालिद को हदिया दिया मारो खालिद नगर कोई बड़ी होगा जो मस्जिद की तबाही करता है अगर हमारे इलाके में जो मशायख हैं उनको दिल से बताइए कितने लोग हदिया दें तो दो और करानी होते चले जाते हैं और अल्लाह के फर्जी और अलमान मशायख किसी के पैसे के मोहताज नहीं और वो बुजुर्ग ही क्या जो पैसे के लोग अपने पास खर्च करते वो बुजुर्ग ही क्या बुजुर्ग तो इधर से आता है उधर करते हैं इधर से आता है उधर करते हैं ये देने वाली की हालत है कि किसी बुजुर्ग के हाथ से उसका माल नहीं चला जाए अलमान से इतना सा रखा हुआ अपने तीन साल पहले खाना में एक काबाए ताजर हैं ताजर वाले थे 4 लाख रुपए है ये पांच दे दिए कि रखो और के जाते ही 50,000 इसको भेज दो, 25,000 इसको भेज दो, एक पौने घंटे में 4,00,000 रुपया खर्च कर दिए। ऐसे होते हैं आवश्यक की ताकत के करने वाले के हाथ से उसका पैसा पहुंचता है तक पहुंचा। तो एक रुपये की शादी है उस दौर के जो परमा तो कौन सा समय अगर शादी का आजा मांझी बनते रहता है अगर शशि रसमोई रहते रहे मां आपसे नामस रहते मां या आपको नामस से रहते रहे ऐसे बुजुर्ग इनके जापन करते हैं। अब जो मैं बात बताने से दरखास्त की है ताकि किसी शादी में जल्दी जाना चाहे तो हम उसी से जा सकता है। ये शब्द सोने की तरह है इसलिए जो बैठे हैं दुबे हैं उस दिन बुजुर्ग हो मजबूरी हो गई मौत ना हो तो देखे क्या है कभी तो खाना पका के राखी खिलाते कभी कहते भाई ये तुम्हारी व्यापक के कहते हैं और मुझे न पकाना आता है ना मेरे पास काम है तो खुद ही पका रहा। तो जब पैसे लेके जाते हैं तो सब मिलके हनुमान याकूब नानों से रास्ते फरमाते कि वो हर हर वक्त माला मशहूर थे तीनों दोनों भी जाते थे खाना भी जाते थे और अपने वक्त के बहुत बड़े बली और बुजुर्ग थे। हमें बुजुर्गों को देखा था बुजुर्गों ने मतलब थोड़ी थे ना कुछ काम करे ना काज करे सारों पर नाम से कराते या घर पर अपने काम से खुद करते थे तीनों दोनों भी कर लेते खाना पकाना थे तो सब ये कहते थे भाई आपको साथ तुम ही पकाओ और हमारे आपको साथ नानो के रख कर आ रहे गोसल करते पूरे कपड़े पहनते और बाजार जाते और शादी के पैसों से सौदा करी के लाके पकाते तो खाना तैयार हो जाते ना रात से इतना करते ये रात से गोसल करते धोए हुए कपड़े पहनते और आके वो खाना खाते। और ये इतने जरिए उलमा और काबिल फरमाते हैं कि शादी के इस खाने का नूर हमारे सीनों में आता तो हमारी कैफियत बदल जाती हमारी तहज्जुद की कैफियत बदल जाती हमारे कुरान के पढ़ने का नूर बदल जाता और अल्लाह पाक हमारे पर वो इल्म खोलते जो उससे पहले नहीं खुलते। और फरमाते थे कि शादी की इस व्यापक के अनबारात एक महीने तक रहते थे एक महीने तक रहते और फरमाते हैं शादी की इजाजत तक इंतजार रहता था। यह है हलाल कमाई की बरकत। अरे भाई और ये देखी कहां हलाल कमाई एक बार शादी रसूलुल्लाह कहां से घंटा लेके आ रहे थे तो एक थानेदार था उसका पुलिस वाला माता ऐसे होता है तो थानेदार की घोड़ी प्रचारा होते रहता था और पुलिस वाले
उस बात का बताया तो इससे बड़ी ताकत क्या होगी।
जवाब ये कि हजरत इंशाल्लाह मैं फलन साहब को लेटर में आपसे मिलने के लिए हाजिर होगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बीवी बच्चों और सारे मुरीदी और तालिबी और सबसे आगे भी वो हैं तो तेरे शागिर्द लेकिन हैं बहुत बड़े बुजुर्ग अपने वक्त के बुजुर्ग हैं बहुत बड़े बुजुर्ग और कई मुताब होता है और फिर उसके सफाई के लिए तैयारी की और उनके ज्यादा का प्रोटोकॉल इंतजाम किया और वो मुताइन था उसमें अपने मुतालिबी को बाप को लेके शहर के बाहर पहुंचे। उस वक्त से माशा ने चर्चा हो गई इमाम शाफी रहमतुल्लाह से ताल्लुक था तो वो भी अच्छे मुदरा और सुफरा और अमरा के साथ भी वो भी सफाई के लिए वहां आया और सबने के वक्त से इमाम शाफी पहुंचे उसने सफाई किया और सांस लेके खड़ा है आए तो सबसे पहले खाने के लिए कमरे में एक दस्तखान पे बैठाया। उस जमाने में जितने अल्लाह के वली और बुजुर्ग थे वो खाना बहुत थोड़ा खाते अल्लाह की पहचान ही खाना बहुत थोड़ा खाते ताकि इबादत कर सकें। मेरे शेख सैयद रजीब सिंह रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए दर्जात को गलत करे उनकी नजरें बहुत ही थोड़ी थी बहुत ही थोड़ी थी आगे पानी चपाती आहिस्ता 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 करके खाए और उनके जो शेख सैयद कुरान फखर उद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह वो 24 घंटे में एक कैंसर सर्जरी का और कोई आदि के नाम गई तो 24 घंटे के अंदर ये और परसों लगभग के अलावा कोई पानी नहीं पिया परसों लगभग के अलावा कोई पानी नहीं पिया। जब हमारा बहुत इंतजार अगर जोर हो जाता तो अंडी की जो पाव दर्दी होती है पाव दर्दी वो जमके में रखे उसे दवा होती है बहुत बड़ी दवा और बहुत बड़ी दर्दी चाहती है करते वाला वाला बच्चे एक जमके सब्जी और फिर आदिश काम सही 24 घंटे की लगाई तो आम अहमदुल्ला का हाल ये था बहुत थोड़ा खाते थे आम हाल क्या है जरूर अच्छा नंबर से इतना सब रहमतुल्लाह को देखा तो मुश्किल से दो या तीन लोग में खाते थे और बस उसे आधा का चाय दूध का भी मेरे पास 10 साल तक फिर हमारा ना यही लेता मुश्किल से दो तीन लोग में बस या दो तीन चमचे दलिए के और आधा पाना का दूध का बस ये जवाब दिया 10 साल तक मैंने देखा और उस सारी दुनिया के सफर 10 साल तक इधर ऑस्ट्रेलिया तक इधर केप टाउन तक उधर लॉस एंजलिस तक इधर मशहद मोहाली के इस 90 साल की उम्र में और इस गजा के ऊपर ये लंबे लंबे सफर आज की तो रूहानियत से चलता है गजाओं से थोड़ी चलता है तो गजा बहुत थोड़ी होती थी लेकिन जब खाने पे बैठते